अध्याय छ। शिखर एक जीवनी, परंपरा, तकनीक और उपलब्धि। सत्य प्रकाश मिश्र। महत्वपूर्ण रचनाओं की विशेषता होती है कि वे जीवन और जगत के बारे में ही नहीं, स्वयं अपनी साहित्यिक परंपरा को नए सिरे से व्यवस्थित करती हैं और भविष्य के लिए संभावनाएं पैदा करती हैं। शिखर एक जीवनी ऐसी ही रचना है जिसकी रोशनी उससे पहले के और बाद के उपन्यास साहित्य पर पड़ती है। शिखर को पढ़ते ही लगता है कि न केवल उपन्यास लिखने का तरीका बदल गया है, बल्कि उपन्यास पर विचार करने का तरीका भी बदल गया। द्विवेदी युगीन मनोरंजन और सोद्देश्यतावादी धारणा से सहसा हम वैचारिकता और उद्देश्य की खोज के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी दृष्टि प्रेमचंद, प्रसाद और जैनेन्द्र पर टटोलने तथा मूल्यांकित करने के भाव से पड़ती है। तब पता चलता है कि उपन्यास गोदान तक आते आते प्रेमचंद की समग्र चेतना और शायद उपन्यास लिखने की पद्धति का भी गोदान है। मानव चरित्रों पर प्रकाश डालने और रहस्यों को उद्घाटित करने के क्रम से वह व्यक्ति चरित्र पर पहुंच जाता है। पूरी मानव चरित्र के साथ साथ एक व्यक्ति भी दिखाई पड़ने लगता है। इनक्रेट कामा। पिछले उपन्यासों से शिखर इस अर्थ में भी भिन्न है कि उसमें व्यक्ति को भी उतनी ही बड़ी विचारणीय समस्या माना गया है जितना प्रेमचंद युग में समाज को। इनोटर कामाबंद। कुंवर नारायण, हिंदी साहित्यकोश, भाग दो। उपन्यास के बारे में दृष्टिकोण का यह बदलाव मनुष्य के बारे में हमारे दृष्टिकोण के बदलाव से जुड़ा है और मनुष्य के कारण है यथार्थ से भी। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता कि जो प्रतिक्रिया छायावाद में हुई उसका कुछ असर कथा साहित्य में हुआ। जैनेन्द्र के उपन्यास उसके प्रमाण हैं और एक हद तक शिखर भी। अंतर केवल यह है कि छायावाद का हृदयवाद उपन्यास विधा के दबाव से कथा साहित्य में उस रूप में रूपांतरित नहीं हुआ। सुनीता, मृणा और कुछ भिन्न है। श्रद्धा और ऋणा की समस्या का रूपांतरण कई रूपों में उस काल की रचनाओं में है। वस्तुतः बुद्धि और हृदय के अविश्लेष्य घूल के बगैर रचना संभव ही नहीं है। अंग्रेजी का विरोध जो प्रेमचंद के उपन्यासों में एक पक्ष के रूप में प्रचार के स्तर पर व्याप्त है, शिखर में भी है। लेकिन शिखर पढ़े लिखे उच्च मध्यवर्ग और मध्यवर्ग की उस सोच को भी व्यंजित करता है जो कांग्रेस पार्टी और भद्र लोगों में पाखंड के रूप में व्याप्त है। मुखौटों को उतार कर उसके भीतर के चेहरे दिखाने का कार्य प्रेमचंद में नहीं है और न उनका उद्देश्य है। गोदान में होरी और मेहता दोनों ही समाज के चेहरे पर लगे इस मुखौटे को उतारते हैं। विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है कि इनोटकामा, गोदान वह स्थल है जहां से प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों ने अपनी कथा आरंभ की। इनोटकामा बंद। गोदान के अंत में प्रेमचंद ने होरी के चेतना प्रवाह का जो प्रमाण दिया है वह शिखर की तकनीक का प्रारूप है। गोदान और शिखर एक जीवनी के दो उद्धरण इस दृष्टि से तुलनीय है। इनोटेड कामा। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पर आने लगी, लेकिन बेक्रम आगे के पीछे, पीछे की आगे। स्वप्न चित्रों की भांति बेमोल, विकृत और असंबंध व सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियों से खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर हृदय बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और इनोटेड काम। गोदान, पृष्ठ संख्या 315। इनोटेड कामा। देखता हूँ कुछ दृश्य है जो बिजली की कोंद की तरह जगमग है, कुछ और हैं जो बुझ गए हैं और घटना के अनुक्रम का धागा तोड़ गए हैं, तोड़ ही नहीं उलझा भी गए हैं। इसमें मैं उन ज्वलंत घटनाओं को भी ठीक कालक्रम में नहीं देखता, मनमाने क्रम से वे चलती हुई आती हैं और चली जाती हैं, और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि क्या पहले हुआ, क्या पीछे हुआ। इतना ही कह सकता हूँ कि यह सब अवश्य हुआ और इसमें यह ध्वनित नहीं है कि केवल इतना ही हुआ या इसी क्रम में हुआ। यूनाइटेड कामन, शिखर, भाग दो, पृष्ठ संख्या 179। दोनों उद्धरण अंत और प्रारंभ से मिलकर पुरानी कथा तकनीक या अंत और नई कथा तकनीक की शुरुआत का आश्चर्यजनक संकेत प्रस्तुत करते हैं। घटना या कथानक के स्थान पर दृश्यों का कंपोजिशन, अनुक्रम के स्थान पर ब्रेक्रम बेमेल, विकृति और असंबद्धता, काल के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण मात्र का ही नहीं यथार्थ के स्थिर जड़ और एक रस स्वरूप के प्रति दृष्टिकोण का भी बदलाव है। उपन्यास रचना पर लिखते हुए प्रेमचंद ने मनोभावों के चित्रण पर लिखा है कि सिंगल एंड टूट कामा, ऐसे उपन्यासों के लेखकों का ध्यान घटना वैचित्र की ओर बहुत कम रहता है। वह ऐसे ही घटनाओं का आयोजन करता है जिनमें उसके चरित्रों को अपने मनोभावों को प्रकट करने का अवसर मिले। घटनाएं कम होती हैं, पात्रों के विचार अधिक। टॉल्स्टॉय के उपन्यासों में यही गुण प्रधान है। ऐसे उपन्यासों को रचने के लिए आवश्यक है कि लेखक अपने को विभिन्न अवस्थाओं में रख सके। इस प्रकार की कहानियों में लेखक का पाठकों के सामने अनिवार्य रूप से अधिकतर अपना ही हृदय खोलकर रखना पड़ता है। दूसरों के मनोगत भावों को जानने का उनके पास और क्या साधन हो सकता है। कोई अपने मन के भाव किसी से नहीं कहता बल्कि छिपाता है। अगर किसी को किसी मित्र के मनोभावों का ज्ञान हो सकता है तो बहुत कम। इसलिए ऐसे उपन्यास लिखना लोहे के चने चबाना है। नोटेड काम बंद। विविध प्रसंग भाग 3। और लोहे के चने चबाने का कार्य किया अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में, उसी तकनीक से जिसका प्रयोग मृत्यु की अर्धचेतन अवस्था में होरी के प्रसंग में प्रेमचंद ने किया है। जाहिर है यह तकनीक उपन्यास के अनुक्रमिक, बाह्योन्मुखी, ऐतिहासिक, कथानक और चरित्र केंद्रित उपन्यास की अवधारणा के ठीक विपरीत है, क्योंकि इस प्रक्रिया में घटना, कथानक और चरित्र का स्थान दृश्य और दृश्यों का कंपोजिशन ले लेता है, जिससे उपन्यासकार स्वसंदर्भी या आत्मवादी हो जाता है। फलतः रचना की व्याख्या की कई संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, जो शिखर एक जीवनी में भी है। भूमिका तथा प्रवेश में लेखक ने अत्यंत कौशल के साथ जीवनी गढ़ने के क्रम में कला वस्तु की निर्मिति का उल्लेख करके अंतर्निर्मित अनेकार्थता का संकेत भी प्रसाद की कमानी की तरह दिया है। यदि इसे न भी माना जाए, हालांकि इस प्रकार के आत्मवादी उपन्यासों में भूमिका और प्राकथन रचना के हिस्से माने जाते रहे, तो भी शिखर के पढ़ने से ही बाल मनोविज्ञान, कामशास्त्रीय, अर्थवत्ता, प्रेम कथा, साहित्य रचना, पाखंडों का उद्घाटन, हितादृशत्व की असलियत को सामने रखना, स्वतंत्रता और मुक्त की आकांक्षा, अपर्याप्तता के प्रति विद्रोह, पूर्णत्व की खोज, चरितार्थता की तलाश आदि अनेक तत्व ऐसे अनुभूति योग का निर्माण करते हैं जो उपन्यास ही नहीं बल्कि विधा मात्र और संगीत आदि के आश्चर्यजनक संश्लेषण की निर्मिति का यत्न करता है। अनुभवों का नया व्याकरण रचा है। निराला ने हिंदी उपन्यास की उपलब्धि और सीमा का संकेत करते हुए प्रकारांतर से संभावना के उन क्षेत्रों का संकेत किया है जो शिखर एक जीवन में मिलते हैं। उन्होंने लिखा है कि नोटेड कामा, प्रेमचंद जी हिंदी के सबसे बड़े औपन्यासिक हैं, पर पूर्व कथन के अनुसार युग को नए सांचे में ढाल देने वाली रचनाएं उन्होंने नहीं थी। युग के अनुकूल रचनाएं की हैं, प्रायः आदर्श नहीं छोड़ा। यद्यपि उनके पात्र कभी कभी प्राकृतिक सत्य की पुष्टि अपने उल्लंघनों तथा उच्छृंखलताओं के भीतर से कर जाते हैं, तथापि रचना में उनके आदर्शवाद की ही विजय रही है। उनके सितार में वही बोल विशेष रूप से स्पष्ट सुन पड़ता है। हिंदी के और उपन्यासकारों कि मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, कारण उनमें खूबियों की जगह कमजोरियों के ही बीमार चित्र अधिक मिलते हैं। कहीं भाषा रो रही है तो कहीं अंधे भाव को रास्ता नहीं सूझता, कहीं अचानक ही सोफे सफ़े के सफ़े रंग डाले और हैं तो कहीं कर्कशता के छुरी से चित्रों की नाखें काट ली है। किसी किसी महालेखक की भाषा तो ऐसी स्थूलांगी है कि जगह से हिलना भी नहीं चाहती। चलना तो हराम, इसे उठना कसम है, और वहीं से दूसरे को रिझाने के लिए अपने ऊपर से मुंह की मक्खियों से आँखों से इशारे करती है। प्रबंध प्रतिमा पृष्ठ संख्या 130। निराला उपन्यास में कथ्य और भाषा के स्तर पर इस विचलन या उपन्यास की मुक्ति की आकांक्षी है। मृत्यु की आसन प्रतीक्षा के रात में देखे हुए विजन, दृष्टिबिंब, अनुभूत संश्लेषण का कायांतरण है शिखर एक जीवनी। इसमें जीवनी शब्द, जैसा कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, वस्तुतः शीर्षक में जीवनी का भाव जीवन मृत्यु से अधिक जीने की प्रक्रिया से है। जीने के इसी क्रम में सर्वतोमुखी विद्रोह, सब कुछ को तोड़ने और ध्वंस कर डालने की इच्छा, बौद्धिक शीतल घृणा, माता पिता और भाइयों के प्रति उपेक्षा भाव या फ्रायड के शब्दों में बाल मनोवृत्ति के अनुसार भाई आदि की मृत्यु कामना, उबाल, निषेध, अवज्ञा आदि क्रमशः सुनिश्चितता, दृष्टि और गहरी अर्थवत्ता या जीवन की चरितार्थता की तलाश में बदलते हैं। इसी चरितार्थता, अर्थवत्ता, संपूर्ति, आपूर्ति संदेशों के सूत्रों का मुक्त आसंग ही शिखर एक जीवनी है। निराला की आकांक्षा का उपन्यास लिखा गया कि नहीं, यह कहना तो कठिन है, परंतु शिखर एक जीवनी में उपन्यास को कला के स्तर तक पहुँचाने की कोशिश जरूर है, जिससे कविता के मुक्ति की तरह उपन्यास की मुक्ति हो जाए। उपन्यास विधा के रूप में ऐसी आधुनिक विधा है जो काल को इतिहास और विशुद्ध अनुभव के रूप में एक साथ देख सकता है और प्रस्तुत कर सकता है। इस अर्थ में वह कई विधाओं और तकनीकों की विलयित पारस्परिकता से भी संभव है। ऐसा उपन्यास ही एक साथ कई स्तरों पर विद्यमान यथार्थ से टकराहट या उसके बदलाव के पगध्वनि की प्रतीति करा सकता है और साथ ही साथ अपरिवर्तित के प्रति संकेत कर सकता है। शिखर एक जीवनी एक कलात्मक माध्यम के रूप में अज्ञेय के उपन्यास को कलात्मक माध्यम मानते हैं और लेखक के रूप में भाषा के प्रति सदैव सजग रहते हैं। पूर्णतः सफल भले न हो, क्योंकि पूर्ण सफलता की कल्पना भी तो शिखर के बाद ही संभव हो सकी है, लेकिन भाषा के लूली लंगड़ेपन और स्थूलांगी स्वरूप को, अतः यथार्थ के स्वरूप को भी बदल तो दिया ही, और यह बदलाव स्मृति के द्वारा ही संभव होता है। जहाँ इतिहास और संभावना को एक बिंदु पर विजन के भीतर स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि लेखक वर्तमान में स्थिर होते हुए वर्तमान में नहीं रहता है और स्मृति के द्वारा सर्जित इतिहास को वहाँ खींचता है जहाँ वह होता है। इस तर्क से कलाकृति अनेक प्रकार के व्यवहारिक विभाजनों और नामों के भीतर स्थिर होकर भी उनके निषेध से उत्पन्न होती है। यह निषेध समय के प्रसार की भांति हर प्रकार के आग्रहों और नामों के निषेध तक फैल जाता है। शिखर एक जीवनी इसी अर्थ में महज एक उपन्यास नहीं, बल्कि कलात्मक उपन्यास है, जिसका न प्रारंभ है और न अंत। इस प्रकार का उपन्यास इस अर्थ में मनुष्य के पूरे इतिहास को, उसकी वेदना और खुशी को, पाप और पुण्य को, सत और असत को, अच्छाई और बुराई को, काम और निष्काम को तथा विद्यमान हाहाकार और पाखंड को एक साथ अभिव्यक्त कर सकता है। प्रतिध्वनि सत्य को प्रतिभाषित करने के क्रम में वह यथार्थ के उस दलदल का भी संकेत करता है जिसमें धसना ही धसना है और भारतीय समाज में व्याप्त वर्जनाओं के उन कारणों का भी, जहाँ सामान्यतः और असामान्यतः दोनों ही पागलपन है। शिखर के प्रेरक तत्वों में एक ओर जहाँ तत्कालीन हिंदू उपन्यास, मध्यवर्गीय पश्चिमोन्मुखी दृष्टि, भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, एक रस्ता स्थिरता और जड़ाव के हद तक पहुँची हुई विलयित चेतना है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में उपन्यास की वह सौंदर्य शास्त्रीय परंपरा है जो रूसो, नीत्से, मार्क्स और फ्रायड, बार्क्सा और कांट के विचारों का तथा धर्म, अधर्म, अर्थ, काम और मुक्ति के वास्तविक अर्थों की तलाश से जुड़ी है, क्योंकि यह वह समय है जब भारत का पुनर्जागरणकालीन बिंब धूमिल पड़ने लगा है और हिंदी में यूरोप की बड़े पैमाने पर खोज होने लगी है। एक यथार्थ से घबरा कर मृग तृष्णा को यथार्थ समझने के भ्रम का परिणाम है शिखर एक जीवनी, इसीलिए मूलतः बड़ी ही त्रासद है हूरी से अधिक। हिंदी उपन्यास के विकास में परीक्षा गुरु की भूमिका में पश्चिमी उपन्यासों की तरह हिंदी में उपन्यास लिखने की इच्छा निरंतर विद्यमान रही है। प्रेमचंद ने उपन्यास पर लिखे अपने लेखों में पश्चिम के अनेक उपन्यास लेखों के उद्धरण दिए हैं। अज्ञेय में अगर हिंदी उपन्यासों के कालक्रमिक पारंपरिक उपन्यासों का स्वरूप बदलने की इच्छा है तो यह इस तकनीक की अपर्याप्तता के बोध से ही नहीं, बल्कि तकनीक के कारण यथार्थ का सांचे में ढला हुआ वह स्वरूप बोध भी है जो हमारे संवेदन को ऐसा ही है कि प्रतीति तक ही ले जाता है। शिखर एक जीवनी रोमांटिकता का प्रसार है या उसमें रोमांटिकता है तो इस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में वह छायावाद में प्रयुक्त होती है, बल्कि इस अर्थ में कि वह नॉर्म, प्रभुसत्ता यथा स्थिति के प्रति विद्रोही है। वैसे तो रोमांटिक शब्द के प्रयोग की दृष्टि से लगभग 11,396 अर्थ बताए जाते हैं। विद्रोह एक अर्थ में अपर्याप्तता या असंपूर्णता की प्रतीति से उत्पन्न होती है। इस प्रकार शशेखर की रोमांटिकता वैयक्तिकता की नहीं व्यक्तित्व की खोज या व्यक्ति के मुक्त विकास के संभावनाओं की तलाश का पर्याय है। और कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है या कला संपूर्णता की ओर जाने का प्रयास है, व्यक्ति को अपने को सिद्ध प्रमाणित करने की चेष्टा। त्रिशंकु, कला का स्वभाव और उद्देश्य। शिखर एक जीवनी कला वस्तु भी है। कला के प्रति यदि भाव या अडिग आस्था इस शिखर को दर्द से बड़ा विश्वास होता है या किसी के विरुद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है, किसी के लिए लड़ना भी जरूरी है तक पहुंचाती है। शिखर अपने माता पिता की भिन्न प्रकृतियों से उत्पन्न 6 संतानों सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शिखर, रविदत्त और चंद्र में से अपनी विशिष्टता के प्रति जागरूक बालक था। बालक शिखर के बचपन की शिक्षा की व्यवस्था उस युग के हिसाब से उच्च मध्यवर्ग के अनुकूल हुई थी। जब से उसे होश हुआ था तब से वह प्रत्येक बात में अकेला ही रहने का व्यस्त था। शिखर का नाम माँ ने बुद्धदेव रखा था, जिसका संदर्भ प्रारंभ में ही है और जहाँ शिखर और अज्ञेय एक हो जाते हैं। शशि की माँ विद्यावती, जो उसकी सगी नहीं रिश्ते की मौसी थी, ने माँ से चंद्रशेखर रखने को कहा था। निश्चय चंद्रशेखर और शशि में एक श्लेष है, जो शंकर के मस्तक में विद्यमान शशि का और प्रकारांतर से उपन्यास के भवितव्य का संरचनात्मक संकेत भी है। यह भी एक प्रकार का कलात्मक कौशल है या कथावस्तु की गढ़न है कि शिखर से अत्यंत निकट से संबद्ध चरित्र या व्यक्तियों का नाम श से ही शुरू होता है। शिखर एक जीवनी में अनुक्रम और सहवर्तित के एकत्र निर्वाह के कारण अर्थवत्ता के अनेक स्तरों में इसे शिखर से संबद्ध महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास का एक क्रम निर्मित किया जा सकता है, जो शिखर व्यक्ति का भी होगा और शिखर लेखक का भी निमित्त होता है, जो लेखक मात्र का भी हो सकता है या अज्ञेय का भी हो सकता है और शिखर का भी। शिखर और लेखक दोनों का यह कथन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दोनों के जीवन में व्यक्ति और टाइप का एक अविश्लेष्य घोल है। शिखर में सर्वत्र मुक्ति, स्वतंत्रता, निर्बंधता, अपने को जानने और पाने का प्रयत्न, आत्म की खोज और यौवन वर्जनाओं से मुक्ति की कोशिश संरचना तत्व के रूप में विद्यमान है, जिसका प्रमाण बचपन से नौजवानी तक के अनुभव पर केंद्रित यह उपन्यास ही है, जहाँ चेतन अचेतन के खजाने से अनेक मूल्यवान रत्न और आकांक्षाएँ स्मृति के माध्यम से रूप ग्रहण करती हैं। उपन्यास में जो अन्य चरित्र या घटनाएँ दृश्य आए हैं वे दो प्रकार के हैं। कुछ तो हैं जो बाहर प्रकाश डालते हैं और शिखर के युग को, उसके समय को परिभाषित करते हैं, जो वस्तु पर जगत और ऐतिहासिक समय है। इसके अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन, अंग्रेजी विरोध, अछूतों की समस्याएं, धर्म और अर्थ की समस्याएं, विश्वविद्यालय, प्रकाशन व्यवसाय, महंगाई, गरीबी, मिसप्रतिभा, अति, जिन्नया, शांति शारदा, अमूलक राय, रामेश्वर, उसका पिता, उसकी माँ, बेरोजगारी, एंटीगोनम क्लब आदि आते हैं। वस्तुपरकता आत्मपरकता से नितांत अलग भी नहीं है। वस्तुतः रचना के स्तर पर जिस तकनीक के सहारे सब कुछ रचा गया है, उसमें वस्तुपरकता आत्मपरकता से प्रभावित होकर शिखर के व्यक्तित्व की खोज के संदर्भ में भी मूल्यवान है, क्योंकि ये सब शिखर के कारण है। घटित होने के बावजूद अर्थवत्ता या दृष्टिकोण की दृष्टि से ये शिखर की स्मृति के अंग अतः उसकी खोज है। खोज इस अर्थ में कि शिखर के पूर्व इतनी तीव्रता और गहराई से किसी उपन्यास में पाखंड का उद्घाटन नहीं किया गया था और न ही असलियत को स्वीकार किया गया था। शिखर में इस दृष्टि से कहीं भी यथार्थ का आदर्शीकरण नहीं मिलता है, जो औपनिवेशिकता के दबाव से अपने को आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न महसूस करती थी। अपने आप में अज्ञेय को हिंदी उपन्यास को यही एक सबसे बड़ी देन है। उन्होंने साहसपूर्ण स्वीकृति को मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया है और उसके लिए जैनेन्द्र की तरह से किसी दर्शन या आदर्श की वैसाखी नहीं पकड़ी। प्रेमचंद के उपन्यासों में पाए जाने वाले सरलीकरणों या प्रश्नों के उत्तरों की अपर्याप्तता से अज्ञेय परिचित थे और गोदान तक पहुँचते पहुँचते प्रेमचंद भी दिए गए उत्तरों से असंतुष्ट थे। गोदान उत्तरहीनता का उपाय है और प्रश्नों और समस्याओं को खुला छोड़ देता है। इस प्रकार के प्रश्नों का एक उत्तर देने का प्रयत्न प्रसाद की तितली में है और एक उत्तर इरावती में। प्रेमचंद और प्रसाद के उत्तरों में अपेक्षाकृत काफी साम्य है। कामायनी और प्रेमाश्रम एक उत्तर खोजने के प्रयत्न ही तो हैं, लेकिन दोनों लेखकों की अंतिम कृतियों में दिए गए उत्तर उपन्यास और भारतीय समाज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र ने अप्रतिरोध का अहिंसावादी समाधान या उत्तर खोजा व मनुष्य को बदलने का कुंठारहित करने का जैन धर्म प्रभावित गांधीवादी उत्तर था, जो एक प्रकार से छायावाद का विस्तार या प्रेमचंद या परिष्कृत प्रेमाश्रमीय उत्तर ही है। अज्ञेय को प्रसाद की इरावती का उत्तर समझ में आता है। शेखर की प्रकृति को देखते हुए वही संभव ही है। दूसरी ओर जैनेन्द्र की आंतरिकता उन्हें आकर्षित करती है, जो उपन्यासकार के संदर्भ में जैसा कि गोदान पर लिखते समय शाही ने लिखा है कि दोस्तोयेवस्की की तरह मानव के भीतर ही ऐसी राह खोजना है जो अनंत दिशा का संकेत दे। अज्ञेय के लिए इस दृष्टि से रचनाकार के रूप में दूसरा रास्ता ही संभव था। तत्कालिकता की दृष्टि से परतंत्रता के बंधनों से मुक्त के रूप में सतत क्रांति के रूप में त्रास्की का रास्ता, जिसके विषय में उन्होंने शेखर के समय के क्रांतिकारियों के लिए भी वही सबसे प्रिय रास्ता माना है। हंस जूर 1947। और आंतरिकता की दृष्टि से वही शेखर एक जीवनी भागदो में मदन बाबा, रामजी, मोहसिन और शशि के माध्यम से उन्हें जेल के एकांत और जेल के बाहर मिलती है। शेखर इस अर्थ में राहों का अन्वेषी ही है। रास्तों का होना न होना एक बात है, रास्ते की खोज ही प्राथमिक शर्त है राहों के होने या बनाने की। इरावती और ध्रुवस्वामी के रास्ते के उत्तर को तो 1930 से लेकर 1940 तक लिखी गई अनेक कहानियों में भी मिलेंगे, जो छोड़ा हुआ रास्ता में संकलित हैं, जिसमें अधिकांश क्रांतिकारियों से संबंधित हैं, जिन्हें पढ़कर लगता है कि रचनाकार माध्यम को माँच रहा है। इनमें भावना अधिक है, वैचारिकता कम। शेखर द्वारा हर स्थापना शास्त्रोचित उत्तरों और मान्यताओं पर लगाए गए प्रश्न चिन्ह पूरे वृत्त चक्र को ही उद्वेलित करते हैं, सामाजिक मंथन पैदा करते हैं, विधि निषेध को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, और यह कसना ही शेखर को संपन्न बनाकर उसमें जिज्ञासा की वृद्धि करता है। शेखर जिज्ञासा को सृष्टि की गतिशीलता और सृजन का आधार मानता है। जिज्ञासा कहानी जो मूल रूप में 1929 ईस्वी में लिखी गई थी और उस इस रूप में 1935 में लिखी गई, को सहचार कर्म की दृष्टि से शेखर भाग दो पृष्ठ संख्या 79 पर यथावत संस्थापित किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे ये कहानियां विन्यास क्रम के तर्क में से संपादन के कारण में पिगमाल्य की मूर्ति की कलावस्तु गढ़ने के क्रम में निकल गई है या निकाल दी गई है, जैसे छाया, क्षमा, दुख और तितलियां। प्रश्नानुकूलता को आधुनिक उपन्यास का सबसे बड़ा गुण माना गया है। शेखर इस अर्थ में आधुनिक है कि वह सहज स्वीकारी नहीं, जिज्ञासा प्रश्नानुकूलता का ही दार्शनिक संस्करण है। उषा और ईश्वर के अंतरंग शेखर द्वारा बालकोचित जिज्ञासा के साथ पूछे गए प्रश्न और पाठक के संवेदनों को सहजता, मार्मिकता और बौद्धिकता की दृष्टि से संवेदित या विचलित ही नहीं करते हैं, बल्कि बालक और पिता की दुनिया के यथार्थ से अधिक गहरे यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। ये प्रश्न या एक ऐसे प्रश्न पश्चिम के उपन्यासों में आधुनिक उपन्यास की पहचान के रूप में 20वीं शताब्दी के प्रतीक के रूप में पहले ही पूछे जा चुके थे, परंतु हिंदी में पहली बार इस रूप में पूछे गए हैं कि सहसा वे हर पाठक को एक साथ बालक और पिता, शेखर के पिता हरिदत्त बना देते हैं और जो नहीं पूछे गए हैं उन्हें समेट लेते हैं। यह प्रश्न यथार्थ के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण की सूचना देते हैं, और साथ ही नए दृष्टिकोण के प्रकाश में स्थापित या विद्यमान के प्रति संशय भी पैदा करते हैं, जो शेखर के मन में अनेक बार पैदा होता है, जो नृवंश के विकास के साथ आदम की कथा से जुड़ा हुआ है। अनुद्घाटित यथार्थ और उद्घाटन और संशय प्रश्नानुकूलता एक प्रकार से के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं और उपन्यास को दृष्टिकोण के उपन्यास के रूप में बदलते हैं। चीजों को देखने के दृष्टिकोण का बदलाव ही शेखर की रचना का कारण है। शेखर का देखना मूलतः वहीं से शुरू होता है जहां होरी, मेहता, मृणाल आदि दृष्टिकोण के परिवर्तन के प्रमाण है। यह सब कुछ होता ही है भाषा में है। गोदान जहां खत्म होता है वहीं वह तकनीक और भाषा भी खत्म होती है। अतः प्रश्नों के उत्तर के लिए या प्रश्नों के लिए ही नई प्रकार की भाषा और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। रचनाकार के रूप में शिखर का विकास उपन्यास में शांति, सौंदर्य, गति आदि के अनुभव से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि भाषा के अध्ययन में अत्यंत सीधे तरीके से शिखर के मानसिक विकास के साथ भाषा का एक रिश्ता भी ढूंढा जा सकता है। शिखर भाग दो में जहाँ दृश्य काफी विस्तृत है और अनुक्रमिकता अधिक है, यहाँ तक कि स्मृति के भीतर से स्मृतियों का योग है, भाषा प्रौणता और चिंतन की गंभीरता है और सहज प्रक्रिया का निष्कर्षात्मकता नहीं है, जिसे भावुकता कहा जाता है और जो बालक शिखर के उबल कर कहने से संबद्ध है। पहले भाग की अपेक्षा अंग्रेजी की युक्तियों और उद्धरणों का प्रयोग नहीं है। बंगला और संस्कृत के उद्धरण और भारतीय संदर्भ अधिक हैं, जो शिखर की समझ का ही लक्षण है नहीं है बल्कि एक संदेश है। पहले भाग की तुलना में दूसरे भाग की और परिपक्वता का जो रचना की शर्त भी है। शिखर एक जीवनी के प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करना आवश्यक है, और वह यह कि शिखर में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हिंदी का लेखक बोल रहा है। बार बार यह लगता है कि एक लेखक लिख रहा है, अर्थात शिखर की समस्या एक भारतीय की समस्या है, जो प्रेमचंद की समस्या थी या प्रसाद की समस्या थी या निराला की थी। दुर्भाग्यवश बाद में उपन्यासों और कहानियों में लगने लगा कि यह हिंदी का नहीं बल्कि बिहार का लेखक है, यह पहाड़ का है और पहाड़ या बिहार या करेता या पूर्णिया के क्षितिज पर भारत स्थित है। शिखर में निरंतर इस अर्थ में व्यक्ति चरित्र के बावजूद एक प्रकार का मानव चरित्र भी समाहित है, उसको देशकाल का भी शुद्ध देशकाल हो सकता है। एक तरह से यह तात्कालिक प्रश्नों पर चिरंतन दृष्टि और चिरंतन प्रश्नों पर तात्कालिक दृष्टि का प्रश्न है। शिखर में प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण है। यह प्रमाण शिखर की जीवनी के अध्यायों के विभाजन क्रम में है, जिसे सृष्टि और मनुष्य के विकास क्रम का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाण माना जा सकता है, और जो रचना में काल की दृष्टि से नहीं बल्कि वैचारिकता की दृष्टि से एक प्रकार के अनुक्रम का निर्धारण है। यही वैचारिकता शिखर एक जीवनी भाग दो में विवेक में परिणत होती हुई दिखती है, जिसका पहला प्रमाण उसका जेल प्रसंग है। पहले भाग में सहज बोध से बुभुक्षा काल और बुभुक्षा से वासना काल या बौद्धिकता की ओर का प्रभाव मिलता है। बालकोचित अहमवाद जो बालक मात्र का गुण है, क्योंकि हर बालक अपने जन्म से ही विशिष्ट होता है, अपने देह या भोग के तर्क से संसार को स्वीकार करता है, वह अपनी स्वीकृति चाहता है, अपनी खोज तथा निर्मिति की स्वीकृति, विशिष्टता, अद्वितीयता की संपुष्टि चाहता है। शिखर के प्रारंभिक अंश इस दृष्टि से सर्वोत्तम है, जहाँ बालक की दृष्टि से सब सहज है। सरस के संदर्भ में व्याख्यायित प्रसंग भी, इस अर्थ में शिखर भी एक बालक है और सामान्य से कुछ थोड़ा भिन्न वह इस अर्थ में होता है कि वह देखने लगता है जो समाज की स्वीकृति से भिन्न है। बालक शिखर रचना स्तर पर शिखर एक जीवनी की तकनीक से अपने समय के परिप्रेक्ष्य में पूरी मानवतावाद को परिभाषित करता है। इस अर्थ में वह विद्यमान ढोंग और झूठ का निवारण करता है और उसकी निवारणता में ही अपनी और अपने देश की और मनुष्य की समस्याओं का हल खोजने तथा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न भी करता है। निम्नलिखित उद्धरण शिखर के व्यक्तित्व के आधार की ओर ही नहीं उस बौद्धिकता की ओर भी करता है जो प्रेमचंद युग और उनके बाद के रहस्यमय वातावरण की परम आवश्यकता है। इसमें धर्म, ईश्वर, भवानी, गरीबी, महंगाई आदि का भी सही तात्कालिक उत्तर खोजा जा सके। ये नोटिस का माम उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निदेशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। बौद्धिकता के साथ सहजता की बुनावट ही इस उपन्यास की महानता का कारण है। लेखक उन स्थलों और दृश्यों को उपन्यास के माध्यम से जीवंत और संप्रेष्य बनाना चाहता है, जो बाद में एतादृशत्व के कारण संभव नहीं हो पाती। बाल्यावस्था और तरुणाई की उन नवीन और जीवंत क्षणों की खोज का प्रयत्न ही तो यह उपन्यास है। विश्व में अनेक महान आधुनिक उपन्यासों की शुरुआत इस प्रकार की स्थिति में हुई है, जहाँ मृत्यु के साक्षात्कार के क्षणों में वेदना की घनीभूतता को से जीवन का सहज टटका और प्रभावशाली बिंब निर्मित हुआ है। शिखर एक जीवनी का शिखर बचपन और तरुणाई के कारण है। वह सब देख सका जो प्रौढ़ और वृद्ध नहीं देख सकते थे। हमारी अनुभूतियाँ फिर ताजी और गहरी अंकित हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि कितनी सहज अप्रच्छन्न निर्मल और सशक्त हैं। शिखर जब तक बालक है तब तक उसके लिए सब सहज है, परंतु जैसे ही उसे कुछ लज्जाजनक या घृणास्पद प्रतीत होता है वह वैसे ही वह हो जाता है जो पहले नहीं था। इंटर कामन शिखर एक जीवनी भाग एक पृष्ठ 138। प्रवृत्ति के सामने निरावृत्त होने का ऐसा ही अवसर है जिसमें वह सौंदर्य से विभूत हो जाता है, परंतु बाद में व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड नो पढ़ने के बाद वह सहसार्थ बदल जाता है। प्रारंभ की प्रतीति जैसे एक स्पर्श के साथ झंझनाकर टूट जाती है, कुछ पापमय और गर्हित लगने लगते हैं, जिससे मुक्ति उसे शशि के सहचर्य के बाद ही मिल पाती है। शिखर में ऐसे अनेक स्थल हैं जैसे कश्मीर का दृश्य, समुद्र में तैरने की प्रतीति, झरने के पास लेटने की अनुभूति आदि, जो विद्रूपताओं और पाखंडों के संसार से नितांत परे हटकर और शायद उनके परिपार्श्व के कारण ही निराश्रित अनुभव कराते हैं, जिसके लिए ही भाषा और कला अपने को रूपांतरित करती है और ऐसी ही प्रतीति के लिए वह जीना भी चाहता है। शिखर एक जीवनी के प्रकाशन के ठीक बाद छपी विश्वंभर मानव, रामचंद्र तिवारी, श्रीकृष्ण सक्सेना आदि की समीक्षाएं शिखर की नवीनता और विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख करती हैं। शिवदास सिंह चौहान ने कथा साहित्य की समस्याएं में लिखा है कि अज्ञेय का शिखर एक जीवनी गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण और कलात्मक उपन्यास है। निमिचंद जैन प्रतीक में घोर आत्मरत्ति के कारण लेखक अपने ही संकुचित परिधि में चक्कर काटता रहता है और घुटता रहता है। लिखते हुए भी उसकी तीव्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और कहना पड़ा कि नोटेड कमान अंतर्मुखी साहित्य में एक तीखी तीव्रता है जो प्रायः पाठक को अवसन्न छोड़ देती है। नोटेड कमान रामविलास शर्मा ने स्टालिन के प्रति व्यक्त वाक्यों के कारण, हालांकि स्टालिन के बारे में अब काफी तथ्य प्रकाश में आ गए हैं, शिखर के आत्मविश्लेषणात्मक अंश के आधार पर उसे कुंठावाद का प्रतीक मानते हुए लिखा है कि शिखर ऐसी चरम स्वार्थपरता का प्रतीक है कि वह किसी भी जनहित के काम में हिस्सा नहीं ले सकता। यद्यपि 1943 के हंस के प्रांतीय भाषाओं का प्रगतिशील साहित्य में लिख चुके थे कि यूनाइटेड कामा वत्सायन की रचनाओं में एक तरह की सांस्कृतिक तटस्थता है। वह शिखर के मनोविश्लेषण में भी इलियट की धारणा लिटरेचर इन एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी साहित्य द्वारा आम व्यक्तित्व के से तटस्थ हो सकते हैं को पुष्ट करते दिखाई देते हैं। उनकी समस्याएं कुछ कुछ लॉरेंस की सी हैं, परंतु लॉरेंस से भिन्न वह क्रियाशील व्यक्ति हैं। उनके मनोगत बंधन भस्म हो रहे हैं, परंतु मानव या अग्नि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यूनाइटेड कामा नंदुराले वाजपेयी से उपन्यास मानने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड कामा क्योंकि इसमें एक ही पात्र का चरित्र चित्रित है और वह भी नितांत एक रस। यूनाइटेड कामा जीवन में एक विवशता एक विशालता अवश्य है, किंतु उपन्यासिक विशालता नहीं। घटनाओं परिस्थितियों और चरित्रों का संघर्ष किसी बड़े पैमाने पर नहीं पाया जाता। इसमें कला और चित्रण संबंधी ऐसी प्रवणता है कि इसके महत्व का संदेश नहीं किया जा सकता। नलिन विलोचन शर्मा ने आलोचना के उपन्यास विशेषांक में लिखा है कि अज्ञेय ने इंटर कमा शिखरी जीवनी में कुछ फ्रायर, क्राफ्ट, एविंग, हैवलॉक, एलिस और कुछ लॉरेंस से अनेक उपादान लेकर कोनराड की प्रत्यक्ष दर्शन प्रणाली का उदाहरण स्थापित किया है। अगे इस उपन्यास में न तो प्रत्यक्ष दर्शन प्रणाली के कठिन स्थापत्य का निर्वाह कर पाते हैं न उपन्यास के मुख्य पात्र के प्रति निर्लिप्तता का। नोट पर ये टिप्पणियाँ और समीक्षाएं उपन्यास के प्रकाशन के आसपास की हैं और कुछ विशिष्टताएं लिए हुए हैं। सामान्य पाठकों को यह अपूर्व रचना प्रतीत हुई। साहित्य संदेश भाग 5 अंक 2 में शिखर एक जीवनी भाग 1 की समीक्षा करते हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना ने लिखा है कि नोट कामा शिखर एक जीवनी के प्रकाशन से न केवल हिंदी के प्रथम कोटि के उपन्यासों की गिनती में वृद्धि हुई है, बल्कि कई दृष्टियों से एक अपूर्व रचना हिंदी को उपलब्ध हुई है। यह मान ग्रंथ अंग्रेजी अथवा अन्य यूरोपीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के समान ही प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिक सूझ की गहराई में मानव के चित्र और हृदय के गूढ़तम रहस्यागारों तक पहुँचने की सामर्थ्य में यह उपन्यास विदेशी रचनाओं से किसी तरह भी कम नहीं ठहरता। लेखक ने कल्पना को मूर्त करने की असाधारण शक्ति है और उसका वह पूरा प्रयोग भी करता है। पुस्तक पर सर्वत्र एक महान कलाकार की प्रतिभा की गहरी छाप है। इनपुट कॉमन शिखर एक जीवनी की आलोचना जिन कारणों से की गई वे सब वही हैं जिनकी निरावरणता शिखर का लक्ष्य है। पश्चिमी उपन्यासों के आधार पर शिखर की कमियों का उद्घाटन वैसे ही है जैसे शिखर के आधार पर पश्चिम के उपन्यासों का उद्घाटन। शिखर एक भारतीय उपन्यास है और हिंदी भाषा में लिखा गया उपन्यास है। शिखर के बाद दोबारा वैसा उपन्यास नहीं लिखा गया। सांचे में ढले समाज की सीमा बताना या दिखाना उस समाज के ही हित में है जिसका शिखर निरंतर विरोध करता है। शिखर की उत्तम पुरुष शैली की विशेषता के कारण भी कुछ गलतफहमियां पैदा होती हैं। यह शैली रचना को अंततः आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत करती है। फलतः पाठक जो कुछ देखता है वह वही होता है जो शिखर देखता है या कथानक अथवा बयान करने वाला देखता है। दूसरे इस प्रकार की तकनीक पाठक को भीतर प्रविष्ट कराती है, रचना को समझने पर दबाव डालती है, मनोरंजन पर नहीं। तीसरे इस प्रकार की रचना एक दीक्षागम्य पाठक की न केवल मांग करती है बल्कि पहले से स्थापित कथा रुचियों और संस्कारों को तोड़ती है जिसके कारण भी कई लोगों को एक झटका या धक्का लगता है। नंदलाल वाजपेयी जिसे कमी मान रहे हैं वह उपन्यास की स्थापित मान्यताओं के अनुकूल ही है। यह उपन्यास पात्र घटना ऐतिहासिकता यथार्थ का स्थूल चित्रण कला की रुचिरेखी अवधारणा और निष्कर्षात्मकता स्थिरता आदि को नकारता है और उपन्यास की वह परिभाषा निर्मित करता है जो शिखर के आधार पर ही बनती है। महत्वपूर्ण नई कृतियाँ अपने से पूर्व स्थापित परिभाषाओं को बदलती हैं और अपने जैसी कृतियों की समझ के लिए भिन्न उपन्यास समयों का निर्माण करती है। ये परिभाषाएं इसलिए बदलती हैं कि स्वयं मनुष्य की क्षमता संभावना की स्थितियां भी बदल जाती हैं। शिखर एक जीवनी को पढ़ते समय बार बार यह लगता है कि संसार से उसका संबंध केवल सतत का नहीं है, आंख केंद्रीय का ही नहीं है, बल्कि अधिक गहरा है। इसलिए वह जीने के लिए एक व्यावहारिक दार्शनिक आधार की खोज करता है। शिखर एक जीवनी इसी अर्थ में एक जीवनी है, नहीं तो वह अनेक जिंदगियों की भीड़ में दबी नामहीन एक जिंदगी ही होती। यही कारण है कि इस उपन्यास में प्रारंभ से ही तय है कैसे जिया जाए कि वह सार्थक हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आखिर लेखक उस रात यही तो देखता है जिसकी उस जीवनी की जो शिखर के साथ मिलकर मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी चरितार्थता क्या है? अपना खाता खोलकर एक भारतीय की तरह देखता है। इसमें कुछ जतन से ओढ़ने का भाव है नहीं, और अंत में शिखर को कबीर की तरह यह संतोष होता है कि उसका प्रस्थान जतन से ओढ़ने की ओर ही है। इस प्रकार की तकनीक का प्रारंभिक प्रयोग देवकीनंदन खत्री ने भूतनाथ में और चंदन शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था हमें किया है, परंतु अनुक्रमिकता कथा संरचना में बनी हुई है। इस दृष्टि से यह आधुनिक उपन्यास है कि इसमें पश्चिम के उपन्यास की सभी विशेषताएं और वे भी जिसे वात्स्यायन काल के प्रति दृष्टिकोण के रूप में मानते हैं विद्यमान है। मराठी में भालचंद्र निमाड़े द्वारा लिखित कोसला शिखर एक जीवनी से तुलनीय है। तकनीक शैली और कथ की दृष्टि से कुछ दृष्टियों से शिखर से बेहतर उपन्यास यद्यपि शिखर की बहुत बात का है। इन सभी उपन्यासों में कथानक का प्रत्यक्षतः अभाव, चरित्रों का न्यूनतम विकास, प्रत्यक्ष का विस्तृत वस्तुपरक वर्णन, शब्दावली के साथ विधि प्रयोग, पिता के द्वारा पीटा जाना, प्रभुता मात्र चाहे पिता हो या माता के प्रति विद्रोह की भावना, दमित यौन वर्जनाएं, आत्मपीड़ा और परपीड़ा का भाव, सतत विद्रोह, वाक्यों, अनुच्छेदों और विराम चिन्हों के संकेतात्मक प्रयोग, वैकल्पिक समाप्ति और प्रारंभ, आक्रामकता आदि पाया जाता है। शिखर प्रारंभ में पिता द्वारा टाइप शिक्षित सामाजिक सबकी तरह चेहरा रहित बनाने के क्रम में अवज्ञा या उपेक्षा के कारण प्रायः पीटा जाता है और पीटे जाने के बावजूद वह टाइप या प्रतिलिपि बनने से इनकार करता है। रचना के स्तर पर भी शिखर में इस टाइप से विद्रोह है, परंतु उपन्यास में शारदा, अति, पिता, सदाशिव आदि सभी टाइप हैं और उनके वेशभूषा और नाक नक्श का ऐसा वर्णन भी किया गया है। कॉन्वेंट की सिस्टर, थुक्कु मास्टर, बड़े भाई की कलम न देने का अस्वीकार, अंग्रेज के सामने अंग्रेजी न बोलने का निश्चय आदि अनेक बाल सुलभ शरारत, अवज्ञा, क्रोध के अवसरों पर वह पीटता है और पीटकर विद्रोही और प्रश्नाकूल हो जाता है। रचनाकार के कथन को आवश्यक नहीं कि रचनाओं के बारे में प्रमाण माना जाए, परंतु शिखर एक जीवनी जैसे उपन्यास में तो वह कभी अति प्रामाणिक और कभी अत्यंत अविश्वसनीय हो जाता है। अज्ञेयता शतक में लिखते हैं कि इनोटेड कमा आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा है और वे परिकल्पनाएं सब दमित एवं कुंठित हैं। उसकी सौंदर्य चेतना भी उससे आक्रांत है। इसकी उपमान सब यौन प्रतिकार्य रखते हैं। प्रतीक द्वारा कभी कभी वास्तविक अभिप्राय अनावृत हो जाता है, तब वह स्पष्ट इंगित से घबरा कर भागता है, जैसे बिजली के प्रकाश में व्यक्ति जाग जावे। इनोटेड कामा तार सप्तक पृष्ठ संख्या 278। इनोटेड कामा उपन्यास का यह विकास डार्विन और मार्क्स के आविर्भाव और प्रचार के साथ हुआ। नए वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान ने उपन्यासकार की दृष्टि बदल दी। उसका लिखना ही बदल गया क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई। उसके बाद एक और बहुत बड़ा परिवर्तन फ्रायड के साथ आया। उसकी मनोविश्लेषण पद्धति ने व्यक्ति मानस और व्यक्ति चेतना की गहनताओं पर नया और तीखा प्रभाव डाला, जिससे उपन्यासकार को व्यक्ति मानस को समझने में बड़ी सहायता मिली, बल्कि एक नई दृष्टि और पैठ मिली जिसके सहारे वह विशेष व्यक्ति के मन के भीतर होने वाले संघर्ष को पहचान सका। चेतना प्रवाह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस अथवा स्वगत भाषण इंटरनल मोनोलॉग के उपन्यास इस दृष्टि से परिणाम है। इस नई दृष्टि अथवा दृष्टिकोण के महत्व का एक उदाहरण आधुनिक उपन्यास में काम जीवन अथवा सेक्स का वर्णन है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य पृष्ठ संख्या 83-84। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। शेखर एक जीवनी के प्रारंभ में ही गर्भ स्थित शिशु के प्रसंग में अचेतन और सामूहिक अचेतन के स्पष्ट संकेत हैं। प्रगति के संदर्भ में और शेखर सन ऑफ नेचर लिखने का उल्लेख ही नहीं, जंगल की स्वतंत्रता और मुक्तता की रूसों की तरह कामना करता है। ईश्वर के झूठेपन और मृत्यु की घोषणा वह निश्चय की तरह करता है और फ्रैट की स्थापना का संकेत करता हुआ उसके विपरीत एक स्थापना करता है कि इनोटेड कमा माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाते हैं और पिता की ओर आकर्षित पुत्र माता की ओर आकर्षित कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी माँ प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी डाकू, जुआरी, पतित से पतित मानवता के प्रति अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारणता नहीं है। वे सुलग नहीं सकते, पट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर एक साधारण नहीं, इनोटेड कामा शेखर एक जीवनी पृष्ठ संख्या 112। ज्वाला प्रसाद खेतान ने अज्ञेय की रचनाओं में काम तत्वों की परिणति के अध्ययन क्रम में शेखर में प्राप्त यौन वर्जनाओं के उदय विस्तार और शशि के संदर्भ में तिरुभाव को अनेक उदाहरणों में प्रमाणित किया है। वस्तुतः शेखर भाग एक दूसरे भाग की तुलना में अधिक प्रायोगिक और कम परिपक्व है। भाग एक में दो अत्यंत विभिन्न भावनाओं के समकालीन विकास के चिरंतन के रूप में चित्रित दो दृश्य और सौंदर्य कितना नग्न और नग्नता कितनी सुंदर है, वाक्य के साथ शशि का शब्द शेखर अब उधर आओ, एक वर्जित आवाज कला के चरम आनंद और व्यवहार की बाधा के साथ ही साथ काम संबंधी संकेत परकता भी है। मूर्ति का नंगापन, शिखर का नंगा होना, सुराग से युगनद्ध माता पिता को देखना, दोनों एक नहीं है, इसलिए सर्वत उसे नहीं खोजा जा सकता है। फ्रायड ने इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, विशेषकर द मेटेरियल शेज ऑफ ड्रीम्स के प्रथम अध्याय के अंतर्गत बालकों के प्रसंग में माता पिता, भाई बहन की मृत्यु, नग्नता, गृहविहीनता के कारण उड़ने वाली धूल, झरने, सुखद झाड़ियों, वनस्पतियों के परिचय, हैबिटेट के वर्णन, पुष्प और डंठलों आदि के स्वप्न प्रसंगों के प्रतीकात्मकता की व्यापक और दोहरी अर्थवत्ता का उल्लेख किया है, जो शिखर भाग एक में अधिकता से स्वप्नों, कल्पनाओं और स्मृतियों के कारण पाठ, अनुभव, वेदना और घृणा के रूप में फैले हुए हैं। शिखर घृणा और वासना को प्रेम और राग से अधिक मूल्यवान मानता है, परंतु शेखर की घृणा उसके जीवन और जगत की परिस्थितियों और परिवार से उत्पन्न होकर धीरे धीरे एक मूल्य बन जाती है। भाग दो में ही वह मूलतः प्रेम और फिर त्याग का महत्व समझता है, इसलिए नहीं कि वह क्रम है, बल्कि इसलिए कि झील और शशि के आश्चर्य से घटित व्यक्तित्वांतरण दूसरे भाग में ही है। उपन्यास के ग्रहण में फ्रायड का ज्ञान आवश्यक है, परंतु रचना में वह न केवल अनुस्यूत है बल्कि संरचित कृति के एक तंत्र के रूप में वह झलकता अवश्य है। किसी रचना की निर्मिति में शिखर भी एक रचना है और लेख भी, कितनी तत्व या भावनाएं शामिल है यह नहीं कहा जा सकता, और इसी कारण से हर रचना एक से अधिक व्याख्याएं चाहती है। शिखर भाग एक में 20 वर्ष में 15 वर्ष, 13 वर्ष, गर्भाधान, जन्म, वयसंध्य और मृत्यु के प्रतीक्षमाण क्षण की अनेक स्मृतियों के कल्पित चित्र, दृश्य और अचेतन की अतल में आदिम वासनाएं सुप्त हैं, जो समय समय पर सपनों और दिवा सपनों और प्रतिक्रियाओं के रूप में एक बिंब या संश्लेषण में समय की तरह स्थिर हैं। इसी अर्थ में वे शिखर को एक कलाकृति बनाते हैं। भाषा के शुक्तिमयता और दृश्यों की पूर्वापरहीनता उसे पंचतंत्र कथा सरित्सागर और महाभारत की कोटि में प्रतिष्ठित करती है, जहाँ रचनाओं का समय रचनात्मक समय है, ऐतिहासिक नहीं है, और इसीलिए आज भी प्रमाणभूत और अनुभवभूत है। उपन्यास के भीतर की घटना का एक पक्ष एक ओर मृत्यु के प्रतीक्षमाण परंतु जीने की कामना से सराबोर काल विशेष से जुड़ा है ऐतिहासिक, और दूसरा रचनाकार की कल्पना में संभव विश्व में हो रही घटनाओं की शाश्वतता अर्थवत्ता से। किसी उपन्यास की यह चरम सर्जनात्मक उपलब्धि है जो डॉक्टर लोहिया के शब्दों में तात्कालिक प्रश्नों पर चिरंतन दृष्टि और चिरंतन प्रश्नों पर तात्कालिक दृष्टि से सोचने से ही संभव हो सकती है, और जो शिखर में है।